जयदाम सूर्तो पंगोर मंगल देवते मसर्व सुखदाम भोजो श्री राधा मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल ब्रह्मादम श्री वृद्धा राम सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री गोविंदम मानो स्मरामी श्रीमान राम सरस आनंदम श्री कर्षण गोपीनाथ श्री सुनाम श्री राधा सर श्री मदन मोहन श्री राधा सर श्री गोविंद चरण श्री राधा सर श्री श्री गोपीनाथ ऐ दिन ठाकुर हरि गोविंदनाथ ऐ दिन ठाकुर गोविंद श्री नाम प्रसाद ऐ दिन चरण गुरुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैताधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कल राधाष्टमी है, कल तो हमें मौका मिलेगा नहीं, तो श्रीमती राधा रानी को आज दुर्लभ कर देते हैं। सो बेसिकली कृष्णा भगवद्गीता में कह रहे हैं मत पर तरंगान किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है असम उद्धवा, कि ना भगवान के कोई समान है ना उनसे श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव, हर शक्ति भगवान के अधीन। ये तत्व दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कि तात्विक दृष्टि से क्या सिद्धांत है। सो मत पर धर्म किंचित अस्ति धनंजय। अब ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण से कि ईश्वर बहुत है लेकिन कृष्ण परम ईश्वर। और भागवत में भी कहा गया है ये जान सदा तुम सब कृष्ण स्तु भगवान सुन, कि बहुत सारे भगवान के विस्तार हैं, अंश हैं, अंश के अंश हैं, लेकिन इतने सारे विष्णु तत्व भी अगर हैं तो फिर भगवान कौन है। तो भागवत कह रही है कि कृष्ण स्तु कि परम ईश्वर जो है, जो परम भगवान है वो स्वयं कृष्ण। और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भागवत में रामादिमूर्ति शुकला तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भूमिश्वर, तो कृष्ण स्वयं संभव परम भगवान गोविंद महापुरुषम तब हम जान। कि बाकी जीवों की बात तो छोड़ दो, भगवान की शक्तियों की बात भी एक तरफ रह जाए, जो विष्णु तत्व है भगवान राम नरसिंह देव वराह जितने भी भगवान के वामन देव जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश के अंश हैं। और जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो जितने भी अवतार हैं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जब कृष्ण जब धराधाम पर आते हैं तो सारे कृष्ण तत्व जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इतने महान है कृष्ण कि अगर कोई और विष्णु तत्व अगर असुरों का वध करे तो उनको अच्छी गति प्राप्त होती है, लेकिन अगर कृष्ण स्वयं वध करते हैं तो वो भगवत धाम ही प्राप्त कर लेता है। ये डिफरेंस है कृष्ण और बाकी विष्णु तत्वों के अंदर। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं पुतना वध किया सीधा भगवत धाम पहुंचा दिया, और भगवान कृष्ण में क्योंकि वो सभी जो शक्तियां हैं विष्णु पितर जी का उनके उद्गम है स्रोत है तो उनमें शक्ति है सबको विमोहित करने की उनको कोई विमोहित नहीं कर सकता तो उनमें वो शक्ति है कि वो ब्रह्मा शिव इत्यादि जीवों को सब जो देवी देवता है उनको मोहित कर देते हैं ब्रह्मा और शिव की बात चलिए वो बलराम जी को भी मोहित कर देते हैं कृष्ण की फर्स्ट एक्सपेंशन प्रथम विस्तार बलराम जी अब कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि बलराम जी को भी मोहित कर देते हैं हम शास्त्र में देखते हैं कि भागवतम से हमें पता चलता है किस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया ब्रह्म भगवान के नाम जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े और जो ग्वाल है गोप है उनको चुरा लिया था सो उस समय ब्रह्मा जी भगवान ने विस्तार कर लिया अपना ग्वाल बाल और बछड़ों में तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन से वाले असली हैं जो मैंने गुफा में छुपा के रखे हैं वो असली हैं या ये वाले असली हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो गए फिर उनको डर लगने लग गया मैंने कोई बड़ी भारी गलती कर दी फिर भगवान ने उनको दिखाया अपना स्वरूप भगवान ने पहले दिखाया कृष्ण ने कि जितने भी ग्वाल वाले और बछड़े थे वो सब विष्णु मूर्तियों में बदल गए है ना और विष्णु मूर्ति में बदल गए और फिर सारे भगवान के शरीर में समा गए और भगवान अपने जो मूल स्वरूप है हाथ में दही चावल है उंगलियों में से कुछ थोड़ा सा गिर रहा है फ्रूट्स लगे हुए हैं है ना कटे हुए फल हैं और भगवान हाथ में ऐसे लेके ढूंढ रहे हैं अपने साथी को किधर गए सुबह ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि इससे महान दृश्य कुछ नहीं हो सकता भगवान कृष्ण के इस स्वरूप का दर्शन करने से महान दृश्य कोई नहीं है इसीलिए भगवान का एक नाम कृष्ण सर्व आकर्षक भगवान ने कृष्ण ने शिव जी को भी मोहित कर दिया था है ना ये वही शिव जी है जिनको कामदेव मोहित करने के लिए आया था तो अपना तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिया लेकिन वही कृष्ण वही शिव जी जो है जब उनको भगवान कृष्ण ने अपना मोहिनी रूप दिखाया तो वशीभूत हो गए थे है ना उनके पीछे भागे थे मोहिनी के लिए तो और शिव जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ आपसे डिफीट आपने मुझे हरा दिया मैं बहुत खुश हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यही खासियत है आध्यात्मिक जगत में अगर आप हार जाते हो तो इससे खुशी का अनुभव होता है कि मुझे मेरे एक गाइड मिल गए एक मेरे को स्पिरिचुअल रिसेप्टर एक गुरु मेरे को मिल गए है ना भौतिक जगत में अगर हम किसी से हार जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है नींद नहीं आती कई दिन तक लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है और श्री प्रभुपाद ने भी दिखाया अपने लीला के द्वारा श्री प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले थे सो उस समय श्री प्रभुपाद ने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि देश को आज़ाद कराना इम्पोर्टेंट है भक्ति भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी जो हमारी प्राथमिकता है वो तो देश को आज़ाद कराना है भक्ति सिद्धांत ने कहा नहीं बकवास हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण काम अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना है, हमेशा से ये इम्पोर्टेंट रहा है, आज भी ये इम्पोर्टेंट है, आगे भी वही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होती रहेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद को गुस्सा नहीं आया, प्रभुपाद बहुत खुश हो गए कि हाँ मुझे किसी ने हरा दिया। प्रभुपाद को उस दिन से पहले 1922 जब प्रभुपाद मिले थे उल्टा डिंगा ने भक्ति सिद्धार्थ सर सिंह ठाकुर से, उससे पहले प्रभुपाद कहते मुझे कोई हरा नहीं पाया था, किसी में ताकत नहीं थी, ना ही बाद में कोई हरा पाया। प्रभुपाद प्रभुपाद को बस एक ही बार हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने गुरु से भक्ति सिद्धार्थ सर सिंह ठाकुर से। प्रभुपाद हमेशा इसको बहुत रैलिश करते थे, बहुत आस्वादन करते थे इस बात का कि हाँ मेरे गुरु ने मुझे हराया। तो गुरु अगर आध्यात्मिक जगत का ये स्वभाव है, ये आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है, और अगर हमें गुरु डांट रहे हैं, गुरु अगर हमें कुछ समझा रहे हैं, अगर हम अपने डिफीट अपनी हार स्वीकार कर लें, गुरु की बात मान लें, इसमें बड़प्पन है, इसमें छोटापन नहीं है, बड़प्पन है इसके अंदर। तो शिव जी ने कहा मजा आ गया हार के, मतलब मैं इतना गदगद हूँ आपसे हार के, मैं बता नहीं सकता, मैं वर्णन नहीं कर पाऊँ। और अगर हम बलराम जी की बात करें तो ब्रह्म भुवन लीला में जहाँ पर ब्रह्मा जी विमोहित थे, सारे ब्रजवासी विमोहित थे, ब्रजवासियों की बात छोड़ो, जो गायें थी वो सब विमोहित हो गई, और बलराम जी को भी पता नहीं था क्या हो रहा है। एक साल बीत गया, ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट की बात है, चलो बात खत्म हो गई, अचानक ध्यान नहीं दिया, एक साल बीत गया। लेकिन फिर बलराम जी ने नोटिस किया कि ये जो गाय है, नोटिस कैसे किया कि गोवर्धन के ऊपर गायों को चरा रहे थे जो बड़े गोप थे, और कृष्ण बलराम जो बछड़ों को चरा रहे थे ग्वाल वालों के साथ। जब गायों ने नीचे देखा अपने बछड़ों को, सब तोड़ ताड़ के सारी चीजें, बीच में झाड़ियां आ रही हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, कुछ परवाह नहीं कर रही, दौड़ रही थी अपने बछड़े के पास पहुंचने के लिए, तो बलराम जी को शक हो गया आखिर ये क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि गायें भाग रही थी, जो बड़े गोप थे वो भी भाग रहे थे। तो जब गायें आके अपने बछड़ों से मिली तो जो गोप है वो बच्चों से मिले अपने, गले से लगा रहे हैं, सिर सूंघ रहे हैं, उनका प्यार कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा ठीक है सबको प्यार होता है, लेकिन ऐसा मतलब कभी देखा नहीं मैंने, ऐसा कैसे होता। तो बलराम जी ने फिर भगवान कृष्ण से पूछा है कुछ तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी, मुझे पता नहीं चला तुमने कुछ मुझे भी भ्रमित कर दिया। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि आखिर भगवान कृष्ण ने बलराम जी को विमोहित किया ही क्यों था, जरूरत क्या थी। तो बहुत महत्वपूर्ण था बलराम जी को विमोहित करना, है ना, बहुत महत्वपूर्ण था। अगर भगवान कृष्ण बलराम जी को विमोहित नहीं करते तो बलराम जी जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो बाकी ग्वाल भक्त हैं, उनका विरह सहन नहीं कर पाते। तो बलराम जी को जो बाकी के सखा हैं, श्रीराम सुबल पत्रव जितने भी बलराम जी के सखा हैं, उनका विरह महसूस नहीं हो, इस कारण से भगवान कृष्ण बलराम जी को भी विमोहित करते हैं। तो चलो पॉइंट ये है कि कृष्णा सबकी बात छोड़ो, लेकिन बलराम जी तक को जो फर्स्ट एक्सपेंशन है उनको भी मोहित कर सकते हैं, कर देते हैं आवश्यकता पड़े। पूरा संसार तो उनके जो पूरा संसार है वो तो भगवान को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो महामाया से भगवान की बहिरंगा शक्ति से भी मोहित है। सो ये जो कृष्ण है, जो जिन्होंने आध्यात्मिक भौतिक जगत तो क्या आध्यात्मिक जगत को भी विमोहित करने की शक्ति रखते हैं, और पूरे संसार के लोग भौतिक और आध्यात्मिक भगवान के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं और डरते हैं भगवान से, डर लगता है ना जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया कि देखो चलो तुम्हें तुम्हारी मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, वैसे नहीं हो सकती, ऊपर नीचे घर के बाहर घर के अंदर हथियार से दुनिया भर के वरदान दे दिए। तो हिरण्यकशिपु आगम हुआ नहीं, उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया उसने। सो भगवान आए नरसिंह भगवान के रूप में और हिरण्यकशिपु को मार दिया, लेकिन मारने के बाद भी बड़े गुस्से में थे। तो लोगों ने बोला, सब देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को, आप जाओ, मैं नहीं जाता साथ में। डर रहे थे, उनको पता था उन्होंने गलत किया। अब भागवत में आप पढ़े ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी भी थर थर काम रही थी, वो भी भगवान के सामने नहीं जा रही थी लक्ष्मी जी। तो फिर सबने प्रहलाद महाराज को आगे किया, प्रहलाद महाराज ने भगवान को ग्लोरीफाई किया, तुरंत भगवान ने उठा के उनको गोदी में बिठा दिया, पैसिफाई हो गए, तब ब्रह्मा जी भगवान के सामने गए, है ना, तब उनके सामने गए। तो भगवान नरसिंह देव ने बोला, देखो आप मोटे सीधे वरदान में दिया करो, आप पढ़ो भागवतम, उसमें लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने बोला कि आप ऐसे मत किए। और जब बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उसमें बताया गया कि नारद जी तलाश कर रहे थे कि टॉप मोस्ट डिवोटी कौन से हैं, है ना। तो तलाश करते करते पहले एक दक्षिण भारतीय राजा के पास गए, उसने इंद्र के पास भेज दिया, इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, तो नारद जी ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे में तो बहुत सारे दोष हैं, देखो मैंने ग्वाल बाल चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए, है ना। फिर भगवान ने मुझे स्पेशली मना किया हुआ है कि उल्टे सीधे वरदान नहीं देने असुरों को, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ, है ना। जब एक बार मना कर दिया था कि नहीं देना, फिर रावण को दे दिया, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गलतियां हो जाती हैं, जब गलतियां होती हैं तो भगवान के सामने जाने में डर लगता है, हमें नहीं लग रहा डर, हम आते हैं उनके फटाक से और सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं। नहीं, एक्चुअली में हमें हमेशा प्रभुपाद के पीछे रहना, प्रभुपाद की सुरक्षा में रहना, प्रभुपाद की छाया में रहना, हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, है ना। सीधा भाग के भगवान के सामने जाने का पॉइंट नहीं है, है ना। आगे जाके बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाना भगवान के सामने, उससे भगवान के दर्शन होंगे। जैसे हम बात कर रहे थे रघुनाथदास गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण, मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर कृष्ण सामने खड़े हुए हैं और कृष्ण ने बोला बात सुनो जरा इधर आना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते मैं नहीं जाऊंगा। कौन बुला रहा है? खुद कृष्ण बुला रहे हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहते मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर कह रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी खड़ी होंगी और नहीं भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण बुला रहे हैं, बात सुनो। अकेले खड़े हैं कृष्ण, हम जाएंगे कृष्ण गायब हो जाएंगे वहां से। कृष्ण बहुत ही बड़े महान, सबसे महान चलिया है कृष्ण। लेकिन जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ होंगे तो श्रीमती राधा रानी के साथ है, सेवा प्रवृत्ति है साथ में। श्रीमती राधा रानी के सामने भगवान कृष्ण ट्रिक नहीं लगा सकते, है ना। तात्विक दृष्टि से कृष्ण महान है, लेकिन रस की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी महान है। जो कामदेव, जिसने पूरे संसार को वशीभूत कर रखा है, वही कामदेव जब गया भगवान कृष्ण को मोहने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, उसने सुना था द्वारका में 16,000 रानियों के साथ रह रहे हैं कृष्णा, बहुत सुंदर है, तो चलो मौका है, आसान टारगेट है उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए। गए, जब निशाना साधा तो खुद ही विवलों के नीचे गए। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, है ना, मदन मोहन। मदन का मतलब कामदेव, और भगवान कृष्ण जो है वो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन। और इसीलिए जो मदन मोहन भगवान के बिक रहे हैं वो हमारे संबंध बिक रहे हैं। पूरा संसार जो है वो काम के वशीभूत है, पूरा संसार काम के वशीभूत है। प्रभुपाद ने हजारों बार लोगों को ये समझाया, बताया कि देखो पूरा संसार शिष्णो दर पराया है, पूरा संसार दो चीजों के पीछे भाग रहा है, शिष्ण मीन्स जननाम और उदर मीन्स पेट, अपना पेट भरो और अपने जननांगों को सेटिस्फाई करो। पूरा संसार इसके पीछे भाग रहा है, यही काम है अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बने काम, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करते रहना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहना, बस ये काम वासना। तो अगर इस काम वासना से हमें छूटना है, इस काम वासना से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें उस व्यक्ति की शरण लेनी पड़ेगी जिनको देखते ही काम देव भी विवल हो जाते हैं, और वो मदन मोहन जी। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि देखो सबसे पहले मदन मोहन से अपना संबंध स्थापित, तो आप आगे की बात करोगे। एक बार संबंध स्थापित हो जाएगा, संबंध स्थापना के बाद फिर बात आएगी कि अब संबंध स्थापित हो गया, अब क्या करना है, अब संबंध के अंदर आदान प्रदान करना है, सेवा करना है, तो फिर भगवान की सेवा शुरू हो जाएगी। और भगवान ने अपनी सेवा स्वीकार करते हैं गोविंद देव के, तो जो गोविंद देव है वो हमारे अभिनय विग्रह हैं। और जब सेवा करते करते हम पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, काम का छाया भी नहीं रह जाएगी, तो सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होगी हमें भगवान कृष्ण की चरणों की शरण प्राप्त हो जाएगी, और उसको बोलते हैं प्रयोजन। प्रयोजन के विग्रह हैं श्री गोपीनाथ जी, है ना। तो संबंध विग्रह हैं मदन मोहन जी, अभिदेय बिक रहे हैं गोविंद देव जी और प्रयोजन बिक रहे हैं गोपीनाथ जी. सो अगर हम काम वासना से छूटना चाहते हैं तो हमें तुरंत मदन मोहन जी की शरण लेनी चाहिए और भगवान की सेवा शुरू करनी चाहिए. सो भगवान की सेवा क्यों शुरू करनी चाहिए हमें, क्योंकि उसमें भगवान का फायदा नहीं है, उसमें हमारा फायदा है. शुद्धिकरण के लिए भगवान से अगर संबंध बनाए रखना है तो भगवान से संबंध बनाए रखने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, और सेवा है. सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान से हम पांच रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं रस का, और उन सभी रसों में सेवा जो जो सेवा का फैक्टर है, जो सेवा तत्व है, वो पांचों रसों में विद्यमान है. इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रभुपाद ने इम्पोर्टेंस दी सेवा को. इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि चलो तुम्हारा संबंध स्थापित करते हैं, पहले तुम्हें सेवक बना देते हैं. इसीलिए तो जब दीक्षा होती है तो बोलते हैं नहीं, अकिंचन दास, भावचंद्र दास, वामन रूपा दास. दास अपने आप को दास समझने की कोशिश करो, है ना. और आध्यात्मिक जगत में हमको पता है कि सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मियां भी, और जो सारी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से माना, सारी लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगी है. तो ये लक्ष्मियां कौन है? ये लक्ष्मियां जो है ये श्रीमती राधा रानी के विस्तार है. अगर पूरा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत भगवान कृष्ण का विस्तार है तो जितनी भी गोपियां हैं और लक्ष्मी हैं, भगवान की रानी हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी के विस्तार है. भगवान कृष्ण की समस्त शक्ति में सबसे पावरफुल शक्ति जो है वो भगवान की फलाग्नि शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी, और श्रीमती राधा रानी भगवान की फलाग्नि शक्ति. और अगर कृष्ण मदन मोहन है तो श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी. कि श्रीमती राधा रानी में इतनी शक्ति है कि वो उन कृष्ण को भी मोहित कर लेती है जिन्होंने कामदेव को मोहित कर रखा है. ये श्रीमती राधा रानी है. और श्रीमती राधा रानी ऐसा क्यों करवाती है? श्रीमती राधा रानी ऐसा करवाती है सेवा के माध्यम से. श्रीमती राधा रानी क्यों टॉप मोस्ट है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान को सबसे अच्छी तरह से सेटिस्फाई करना है ना. लोग बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम ही नहीं है भागवत में, तो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं लिया नाम श्रीमती राधा रानी का. क्यों? क्योंकि अगर वो नाम लेते तो समाधि में चले जाते, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पाए. उन्होंने फिर भी श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया भागवतम में, है ना, अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरम. तो उन्होंने अन्य राधितो, इसके द्वारा उन्होंने बताया श्रीमती राधा रानी के बारे में. सो ऐसा नहीं है कि श्रीमती राधा रानी का वर्णन श्रीमती राधा रानी का, और श्रीमती राधा रानी ने यह दिखाया कि भगवान का साक्षात सेवा करनी जितनी महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण और पावरफुल शक्तिशाली विरह में भगवान की सेवा करना. क्योंकि विरह की जो जो फीलिंग है, विरह का जो भाव है, वो संभोग के भाव से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और श्रीमती राधा रानी का इतना प्रभाव है कि कृष्ण समझ ही नहीं पाते कि आखिर किस हद तक मेरे मधुरता का जो है शक्ति राधा रानी पान कर रही है। उसको समझने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके प्रकट हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ऐसे क्या बात है कि मैं सारा सुख भोगने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन मैं ये अनुभव करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी वो मुझसे ज़्यादा रस का आस्वादन करते हैं, जितना रस का आस्वादन मैं कर पाता हूँ उससे असंख्य गुना ज़्यादा रस का आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है। इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने कहा कुछ और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि उनका भाव ही अंगीकार कर लो और फिर पता चलेगा कि आखिर क्या 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 सीमाएं है ना, क्या सीमाएं कि वो किस हद तक मधुरता का आस्वादन कर, क्या उनके मन में क्या चल रहा है। और जब भगवान ने ऐसा सोचा तो भगवान प्रकट हुए, इस भौतिक जगत में अवतरित हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। और हमें ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि एक बार लेक्चर सुन रहा था उसमें बता रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है एक बार झगड़ा हो गया श्रीमती राधा रानी से, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उस समय श्रीमती राधा रानी ललिता देवी के प्रभाव में थी, उन्होंने बोला नहीं माफ करेंगे आप भगवान यहाँ से। तो कृष्णा वहाँ से आए, अब वो उनके सामने जाने से भी डर रहे थे श्रीमती राधा रानी के। तो उन्होंने पौर्णमासी की शरण ली कि आप कुछ हेल्प करो, तो उनको बोला कि देखो आप सबसे पहले तीन चीज़ें, आपको अगर चार चीज़ें करोगे तो कम से कम सामने जा पाओगे। तो बोला कौन सी चार चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो पहले अपने जो घुमराले बाल हैं इसको हटाओ। तो कृष्ण ने अपना जो सिर है शेव कर लिया और उन्होंने बोला अपना श्याम रंग बदल दो तो गोल्डन हो गए। और उनको बोला कि आप अपना त्रिभंग रूप इसको त्याग दो तो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। अब बोले बांसुरी को छोड़ दो तो बांसुरी को छोड़ के हाथ में तो दंड पकड़ लिया, दंड लिया उन्होंने। तो श्रीमती राधा रानी और जो सखियों के पास जाके उन्होंने गाना गाना शुरू किया उन्होंने, है ना, और गाने का ऐसा भाव था कि जो कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब उधर जो श्रीमती राधा रानी है वो भी बहुत परेशान हो रही थी, यार ऐसे ही बना दिया, एक बार और बोल देते थे चलो मार लेते, बोला नहीं ऐसे भगा दिया, परेशान हो गए सारे। तो जब उन्होंने वो गीत सुना तो सारे गोपियाँ उनको पकड़ के श्रीमती राधा रानी के सामने गए कि कोई उपाय निकलेगा कि वापस भगवान से मिलन हो जाएगा। तो जैसे ही कृष्णा श्रीमती राधा रानी के सामने आए तो सारा स्वांग एकदम से गायब हो गया और वापस अपने मूल से अपने श्याम सुंदर रूप में वापस आ गए। और श्रीमती राधा रानी देख के बहुत हंसी थी ऐसा लेक्चर में सुना है। और हम देखते हैं कि भागवतम में बता रहे हैं कि कृष्णा चतुर्भुज रूप बनाकर गोपियों के सामने गए थे, लेकिन जैसे श्रीमती राधा रानी के सामने आए वो अपना चतुर्भुज रूप बनाए नहीं रह पाए, वापस अपने एकदम से जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें आ गए। सो तात्विक दृष्टि से हम मानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, लेकिन रस की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। तो जो विष्णु की भक्ति कर रहे हैं वो वैष्णव है, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं जो कृष्ण के अनुगत्य में वो काश रस है, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी क्या करते हैं वो गौड़ वैष्णव। गौड़ वैष्णव वास्तव में शाक्त है। गौड़ वैष्णव जो है वो श्रीमती राधा रानी के अनुगत है। हम सब लोग रूपानुगा है, हम सब लोग श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत है। और रूपा गोस्वामी हम सब जानते हैं कि रूपा मंजरी है, और रूपा मंजरी किसके अनुगत है? रूपा मंजरी अनुगत है श्रीमती ललिता सखी। और श्रीमती ललिता सखी जो है वो श्रीमती राधा रानी के प्रमुख, ललिता सखी और विशाखा सखी श्रीमती राधा रानी के प्रमुख सेवकों में से, असिस्टेंट्स में से। तो इस परंपरा से देखा जाए तो जो गौड़ वैष्णव है वो श्रीमती राधा रानी के। तो क्वेश्चन है कि हम श्रीमती राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम श्रीमती राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करके, उनका गुणगान करके। तो हम जब कृष्ण का गुणगान करते हैं तो हम कृष्ण का गुणगान भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते, हम भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य वो कृष्ण है जो हमेशा श्रीमती राधा रानी के ख्याल में, श्रीमती राधा रानी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, वो कृष्ण हमारे आराध्य। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर सकते हैं केवल सेवा के माध्यम से, और वो सेवा हमें मिलेगी श्रीमती राधा रानी के माध्यम से। तो कई बार कहते हैं कि जो गुरु हैं वो बलराम जी अर्थात नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। तो साधना अवस्था में गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है, लेकिन सिद्धावस्था में जो गुरु है वो श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि जो गुरु है तो उनको हमें कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, वो नित्यानंद प्रभु और श्रीमती राधा रानी की कृपा के साक्षात मूर्ति है, साक्षात विग्रह है। इसीलिए हमें गुरु की और विशेषकर श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को, आदेशों को, निर्देशों को अपना प्राण, अपना जीवन बनाना चाहिए और अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए प्रभुपाद की सेवा में, प्रभुपाद के मिशन की सेवा में, प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करने में। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा और श्री रूप गोस्वामी की इच्छा और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा कुछ फर्क नहीं, एक है, एकत्व है इनकी इच्छाओं को। और इनकी इच्छा है सभी बंद जीवों को भगवान की सेवा में लगाना किसी न किसी प्रकार से, ताकि वो जो यहाँ पर दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, आनंदामृति वर्धना हमेशा वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं। कृष्ण सेवा रूपी समुद्र के मीठे जल का आस्वादन कर सकते। हरे कृष्ण।